ओम शांति। आज की इस निशा की बेला में अव्यक्त बाप दादा के सभी बच्चों का इस डायमंड हॉल में बेहद स्वागत है। आज हमारे सामने हमारे वरिष्ठ भ्राता जी आदरणीय रामनाथ भाई जी उपस्थित हैं। पहले तो हम सभी आदरणीय भ्राता जी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि आज आप बाबा के बच्चे जो अनमोल ज्ञान खजानों से भरपूर होंगे, उनके मुखारविंद से जो भी आप सुनेंगे उनका सूक्ष्म परिचय हम देना चाहेंगे। भ्राता जी, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में 20 वर्षों से अधिक समर्पित जीवन उस परम पिता परमात्मा प्रभु की सेवा में अर्पित किए हुए हैं और आप वर्तमान समय एक ऐसी बुलंदियों पर पहुंचे हैं जिनके माध्यम से हम और आप सभी बच्चे समय प्रति समय आबू में या साथ ही साथ बाहर सेवा केंद्रों पर जो विशेष ज्ञान और योग की भट्टियां होती हैं, उनमें जो हमें मार्गदर्शन दिशा दर्शन मिलता है, उसमें भी आदरणीय भ्राता जी संपूर्ण रूप से अपना सहयोग देते हैं। साथ ही साथ हमारे इस आबू में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस आदि होते हैं, उसमें भी आपका संपूर्ण सहयोग रहता है। और वर्तमान समय जैसा कि संसार की स्थिति है कि हर व्यक्ति आज धर्म से जुड़ता जा रहा है और इस आबू की धरती पर भी अन्य धार्मिक सम्मेलन होते हैं जिसमें संत महात्मा आदि पहुंचते हैं, तो आप वर्तमान समय हमारी संस्था के धार्मिक प्रवाह के मुख्यालय संयोजक के रूप में पूरा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे वरिष्ठ भ्राता जी से आज हम कुछ अनमोल ज्ञान रत्नों का खजाना सुनेंगे। आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जी, धन्यवाद।
ओम शांति। आज का विषय है कि शांति की शक्ति के द्वारा परिवर्तन शक्ति प्राप्त होती है और परिवर्तन शक्ति के द्वारा संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा कहता है कि संस्कार नेगेटिव को पॉजिटिव में करना चाहिए, लेकिन ये कैसे संभव है? हर एक व्यक्ति चाहता है, कोई सामने वाला गुस्सा करता है, गलत व्यवहार करता है, हमें चुप रहना चाहिए, सहन करना चाहिए, लेकिन ये चुप रहने की सहन करने की शक्ति कहां से आएंगी? तो बाबा कहता है शांति की शक्ति है ये। तो शांति की शक्ति क्या चीज है, कहां से आती है, कैसे प्राप्त होंगी? क्योंकि सारा संसार सारा विश्व क्या चाहता है कि मन की शांति चाहिए, है ना? आत्मा को शांति चाहिए कि मन की शांति चाहिए? दो चीजें, मन शांत हो तो हमारा राजयोग जो है शांत नहीं है, उसको कहते हैं बाबा। एक है डेड साइलेंस, निल होके बैठना, शांत होके बैठना। तो मन शांत रहता नहीं, मन के अंदर कुछ न कुछ विचार आएंगे ही, बुद्धि इधर उधर भटकेंगी ही। तो हमारे बाबा ने जो आकर के, आज भी बाबा ने कहा था, शिव बाबा क्यों आता है? बच्चों को सहज राजयोग सिखाने के लिए आता है। तो सहज राजयोग क्या है? ये राजयोग क्या है कि इसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। जो रास्ते पर कोई चलता है, चलना है, खड़ा होना नहीं है, चलो, लेकिन बिना आवाज के चलो। आप कहेंगे शांति से चलो, मना क्या, शांत होके खड़े हो जाओ, नहीं। राजयोग उसको कहते हैं मन और बुद्धि इधर उधर के विचार न आते हुए, सिर्फ आत्मिक स्वरूप आत्मा का चिंतन करते, मन और बुद्धि यहां से परम धाम तक एकाग्र करते हो, उसके द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उसको कहते हैं शांति की शक्ति। उसको बाबा योग बल कहते हैं। तो सारे विश्व में हर एक आत्माएं क्या चाहती है? शांति चाहती है। लेकिन सिर्फ मन की शांति नहीं है, मन गलत विचार करता है तो अशांत मन कहते हैं। मन के अंदर अच्छे विचार, स्व इच्छा के अनुसार अच्छे सात्विक विचार चलते हैं तब हम समझते हैं मन शांत है ना। लेकिन वास्तव में राजयोग के अंदर जो शिव बाबा आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें योग या राजयोग सिखा रहा है, आज बाबा ने सवेरे कहा था, शिव बाबा क्यों आता है, क्या सिखाता है? सहज राजयोग सिखाता है। तो सहज राजयोग क्या है कि हमारे पास दो शक्तियां हैं। तो योग को यात्रा कहा, याद एक यात्रा है, शांत होके देखते रहो, एक सेकंड मन शांत रहता है, फिर मन के अंदर कुछ न कुछ विचार आएंगे। ऐसे बुद्धि है, बुद्धि के अंदर पुराने संस्कार है, स्मृतियां है, वो जागृत होती है। तो ये दो शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों को जब आप अमृत वेले शाम को योग करने बैठते हो, बाबा को याद करने बैठते हो, ये दोनों शक्तियों को यहां से सूक्ष्मतन परम धाम तक ले जाते हो और जितना समय वहां एकाग्र करते हो, उसके द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उसको कहा योग बल। वो शांति की शक्ति है। तो वो शक्ति जो प्राप्त होती है, जो तब हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है, स्वभाव है, उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये शक्ति प्राप्त नहीं है, ज्ञान समझ में आ रहा है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है, परिवर्तन करने की शक्ति कहां से आएंगी? तब बाबा ने कहा, संसार में कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, लेकिन कैसे करें, शक्ति कहां से आएंगी? तो शांति की शक्ति चाहिए। तो शांति में समझ में आता है, शांत होके बैठना है, नहीं तो आंखें, योग में देख लो, बैठते हैं आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, लाल लाइट जलते ही मन भी शांत, आंखें भी बंद कर देते हैं। क्यों? जो भक्ति के संस्कार है, भक्ति में कैसे योग करते हैं, शांत बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं। तब बाबा ने कहा, शिव बाबा आकर के ये नई विधि बताता है कि जब योग में बैठते हो, शिव बाबा को याद करने बैठते हो, आंखें खोल के बैठो, और मन और बुद्धि दो शक्तियां हैं, इनको खाली नहीं रखो। एक है डेड साइलेंस, नील, और हमारी जो योग है, याद है, उसको स्वीट साइलेंस कहते हैं। तो मन और बुद्धि दोनों चलना चाहिए, लेकिन कैसे चले, उसके अंदर इधर उधर के विचार न आते हुए मन और बुद्धि दोनों यहां से परमधाम तक कैसे चलेगा, तो उसकी विधि चाहिए। अगर विधि नहीं है, आराम से बैठ जाते हो, बैठे बैठे धीरे धीरे नींद आ जाती है, या व्यर्थ विचार चलेंगे, तो खाली मन शैतान का काम करता है। खाली बुद्धि है, उसको कुछ काम नहीं दिया, जो पुरानी स्मृतियां है, कुछ देखा सुना, वो जागृत हो जाती है। तो इसलिए जब बाबा को याद करने बैठते हो, तो ये मन और बुद्धि अपने आप से बात करो। तो बाबा ने आज भी कहा कि आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, पहले अपने को आत्मा समझो, फिर आत्मा का बाप, आत्मा का संबंध किसके साथ है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा से है। आत्मा समझ के बाप को याद करो। कैसे करेंगे? जब योग में बैठते हो, शांत मन अपने आप से बात करता, मन बुद्धि से बात करता है, तो मन और बुद्धि ये दोनों शक्तियों को पहले एक करो, फिर जोड़ दो। तो नहीं तो ये दोनों शक्तियां सदा विरुद्ध दिशा में जाती है, मन एक सोचता है तो बुद्धि और कुछ सोचती है। तो पहले इन दोनों को एक करना चाहिए। उसके लिए जब भी आप योग में बैठो, पहले अपने आप से बात करो। मन पूछता है बुद्धि से, मैं कौन? अगर आप किसी से पूछो आपका नाम क्या है भाई जी, तो आप बोलेंगे ना, नहीं तो पता ही नहीं इनको बोलना आता है कि नहीं है। तो बुद्धि खाली होंगी तो वो भटक जाती है, तो बुद्धि से बात करो। तो उसको कहते हैं आप अपने आप से बात करो, तो उसको कहते हैं अंदर झांक के देखो। तो अंदर क्या है? तो दो शक्तियां हैं। मन बुद्धि से पूछता है मैं कौन, तो बुद्धि ने जो ज्ञान सुना, 7 दिन का कोर्स किया हुआ है, ज्ञान सुना हुआ याद है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं आत्मा हूं। फिर मन पूछता है अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है हाँ ये मेरा रूप है, चमकता और सफेद सितारा हूं मैं। तो मन और बुद्धि ये दोनों आपस में बात करने लगे। तो ऐसे करते करते इन दोनों शक्तियों को यहां से परमधाम तक ले जाओ। तो कैसे ले जाओ? मन प्रश्न पूछता जाता है। अगर मैं भाई जी को देखते ही बात कर रहा हूं तो आप इधर उधर देख ही नहीं सकते हो, कभी भी मैं कुछ पूछ सकता हूं? अगर मैं इनको देखता ही नहीं हूं, उनको लगता है मेरी नजर यहां तक जाती नहीं है, तो खाली व्यक्ति क्या करेगा? जरूर इधर उधर देखेगा ना। तो खाली बुद्धि भटकती है। एक सेकंड भी जब योग में बैठते हो, बुद्धि को आपने फ्री छोड़ा, तो देखना यूं दूसरा विचार घुस गया अंदर, तब आप कहते योग लगता नहीं है। योग में बैठते व्यर्थ विचार आता है, कहां से आ रहा हो? तो बुद्धि का दरवाजा खुला है। इसलिए यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाओ। जैसे मन पूछता जाता है मैं कौन, दूसरा पूछो मेरा रूप क्या है, तीसरा पूछो मेरे गुण क्या है, चौथा पूछो मेरे कर्म क्या, मैं शरीर में बैठ के क्या करता हूं, पांचवा पूछो मैं कहां से आया, सूर्य चांद सितारों से ऊपर क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देंगे हां बाबा ने कहा था सूक्ष्मतन है, तो सूक्ष्मतन में कौन रहता है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। तो बाप दादा वहां क्या करते हैं, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, बाबा कैसे है उधर, तो फरिश्ता किसको कहते हैं, तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देता है। तो सूक्ष्मतन में रूरियान करो, इस स्थिति को कहते हैं फरिश्तापन की स्थिति। और उसके बाद बाप दादा को, ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता किसने बनाया? तो शुभ बाबा ने बनाया। शुभ बाबा कहां है? हां, सूक्ष्मतन से ऊपर परम धाम है। तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। ये दोनों शक्तियां अगर आमने सामने 5 मिनट खड़े कर सकते हो आप, तो अगर रोज अभ्यास करते जाएंगे, कल 15 मिनट होगा, परसों 20 मिनट होगा, तो आधा घंटे तक, 1 घंटे तक एक रस स्थिति में, इधर उधर के विचार नहीं। अगर खाली बैठते ही मन के अंदर इधर का विचार आएगा तो खाली मन है। सारा दिन में जो देखा सुना पर चिंतन, कुछ ना कुछ विचार आएगा ही, तो मन को काम दे दो। हाँ, फिर क्या करते हैं हम? सिर्फ मन की एकाग्रता नहीं, मन एक कोई नहीं, तो दोनों होना चाहिए। बुद्धि भी दो शक्तियां हैं। आज तक संसार ने सिखाया, सारा विश्व के अंदर जो पढ़ाई में पढ़ाते हैं, मन की एकाग्रता, सिर्फ मन लगाओ। तो बुद्धि का काम क्या है? सिर्फ शिव बाबा ने आके हमें कहा कि एकाग्रता माना दो शक्तियां, मन और बुद्धि, इन दोनों को जोड़ दो। पढ़ाई में भी ऐसे ही, मन पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते देख लो, मुरली सुनने बैठते हो, मुरली सुनते सुनते बुद्धि के अंदर कुछ याद आता है, तो कौन याद देता है? बुद्धि भटक रही है। तब कहते हैं ध्यान देके सुनो, आत्म अभिमानी होके बैठो। इसलिए बाबा ने नियम बनाया, क्लास शुरू होने से पहले योग करते। क्यों? अपने को सावधान करो, अपने को जागृत करो, मन और बुद्धि को एक करो। अगर रोज अभ्यास किया ही नहीं है तो यहां बैठते अपने आप एकाग्र तो नहीं होगा ना, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। नहीं तो योग में बैठते ही देख लो आप, नींद आ जाती है, अपने आप आंखें बंद हो जाती है, कारण अंदर मन बुद्धि नहीं चल रही है। हां, जिसका चलता भी हो तो व्यर्थ विचार, संसार के विचार चलते हैं। तब कहते योग में बैठते हुए योग लगता नहीं है, लेकिन योग करने की इच्छा है, पता है बाबा से शक्ति लेनी है। और सारे कल्प के अंदर यही एक संगम युग है जो भगवान स्वयं आकर के आत्माओं को शक्ति देता है। तब बाबा ने बहुत दफा कहा कि स्वयं भगवान आकर ब्राह्मण बच्चों के अंदर पवित्रता की पर्सनालिटी भरता है, पवित्रता की रॉयलिटी भरता है। तो ये कब भरेगा? तब शिव जयंती मनाते हैं। शिव बाबा इस धरती पर कब आया? अब हम सब इधर क्यों आए हैं? किससे मिलने आए हैं? तो शिव बाबा इस धरती पर आकर के हमें शक्ति देता है, हमें ज्ञान सुनाता है। तो क्या ज्ञान सुनाता है? कैसे मेरे से सर्व संबंध जोड़ो, मेरे से कैसे शक्ति को ग्रहण करो, अपने अंदर भरो, बैटरी को चार्ज करो। जब शक्ति मिलेंगी तो शक्ति कर्म क्षेत्र में, जब कर्म करते हो तो पुराने स्वभाव संस्कार जागृत होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं सहन करना पड़ता है, कहीं समाना पड़ता है। तो वो शक्ति कहां से आएंगी? उसको कहते हैं योग के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उसको शांति की शक्ति कहते हैं। अगर ये शक्ति है तो परिवर्तन कर सकते हो, नहीं तो परिवर्तन करना चाहते हैं हम स्वयं को भी और औरों को भी। बाबा ने कहा दुनिया में हर एक आत्मा के अंदर दुख है, तो वर्तमान समय के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान सुनाना चाहिए। किसी को ज्ञान सुनाओ तो कहता हाँ पता है। तो हर एक आत्मा क्या चाहती है? तो बाबा ने कहा सकाश दे दो, मनसा सेवा करो। हर एक के प्रति क्या सेवा करेंगे? अगर हमने अमृत वेले बैठकर अपने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं है, स्वयं के अंदर शक्ति को चार्ज नहीं किया, तो औरों को क्या देंगे हम? औरों को देखते हमारे मन में क्या आएगा? तब बाबा ने कहा शुभ भावना, योग का दान दे दो। तो शुभ भावना क्या देंगे, कैसे देंगे? तो उस अमृत वेले बैठ करके ये मन और बुद्धि को शिव बाबा से जोड़ते हो तो जोड़ने की विधि जानना चाहिए। विधि न जानने के कारण योग में बैठते ही कोई मन के अंदर मुरली का चिंतन करता है, कोई रूरियान करता है, कोई और कुछ कहता है, बाबा से बात करता है ना, क्यों? भक्ति के अंदर आदत पड़ी हुई है, मूर्ति के सामने बैठ के क्या करते हैं, रूरियान करते हैं, बात करते हैं, लेकिन कौन कर रहा है ये? तब बाबा ने कहा पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्मा परमात्मा से बात करता है, तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए क्यों हर सेकंड हम शरीर के भान में रहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, तब का आत्मिक स्मृति को जागृत करो और फिर संबंध जोड़ दो। तो आत्मिक स्वरूप को जागृत करने के लिए, स्वरूप में स्थित होने के लिए पहले अपने आप से बात करो कि मैं कौन। पता है उस स्मृति को जागृत करना पड़ता है। फिर मेरा रूप क्या है, मैं है तो मेरा रूप है, ये मेरा रूप है, चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु हूं मैं। फिर तीसरा पूछो मेरे गुण कौन से, हमारे सात गुण है, रोज उसको जागृत करो। मैं आत्मा जब आया था बिल्कुल स्वच्छ पवित्र था, मैं आत्मा जब आया था बिल्कुल शांत स्वरूप था, कोई अशांति नहीं थी। ये अपने गुणों को जागृत करो रोज, दैवी गुण हमारे अंदर है, रोज याद दिलाना पड़ता है। जब मैं आया था तो कैसे था, बिल्कुल पवित्र था। तो अपने सातों गुणों को रोज याद करो। फिर मैं शरीर में बैठ के क्या कर रहा हूं, अगर देखना हो तो आंखों से देखता हूं, तो शरीर को चलाता हूं, शरीर अलग है। मट्टी में जो चीज बनता है वो खा करके शरीर बड़ा हो गया, कल मट्टी में मिल जाएगा। शरीर अलग है, मैं अलग है। अगर मैं अलग हूं तो मैं कहां से आया, मैं ऊपर से है। ऊपर क्या है, मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है, पर सूर्य है, चंद्रमा है, उसके ऊपर क्या है, हाँ सूक्ष्मतन है। सूक्ष्मतन में कौन रहता है, उसके ऊपर क्या है, परमधाम है। परमधाम में कौन रहता है, शिव बाबा कौन है, शिव बाबा के पास क्या है, प्रश्न करते जाओ। बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान अपने आप जागृत होता जाएगा। ये दोनों एक एक शक्ति ले लो, शिव बाबा कौन है, पवित्रता का सागर है। नहीं तो जाके बाबा मुझे शक्ति दे दो, भक्ति मार्ग के अंदर संस्कार पड़ा हुआ है मांगने की, नहीं मांगने वाले नहीं हम, हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। परमधाम में जाके बाबा से कंपेयर करो, बाप कौन और मैं कौन। जब हम यहां आने से पहले परमधाम में थे तो कैसे थे, जब शिव बाबा के साथ परमधाम में रहते थे तो कैसे थे हम, जैसे बाप ऐसे ही हम थे। तो शिव बाबा कैसा है, एक एक शक्ति ले लो, बाबा पवित्रता का सागर है, सफेद प्रकाश स्वरूप है, कोई भी काले दाग नहीं है। जब हम भी परमधाम में थे जैसे बाप ऐसे मैं भी संपूर्ण पवित्र था, ये स्मृति जागृत होती है। हाँ हम भी बाबा जैसे पवित्र थे, तब बाबा कहता है अनादि स्मृति को जागृत करो। अपना अनादि स्वरूप क्या था, यहां आने से पहले पुराने अंदर संस्कार है उसको जागृत करो। फिर दूसरा ले लो कि बाबा कौन है, शांति का सागर है। मैं कैसे था, हम भी जब परमधाम में थे बिल्कुल शांत स्वरूप थे, कोई भी इधर उधर के विचार नहीं थे। एक एक शक्तियों का अनुभव करते हो तो ये शक्ति भरते हो। जैसे आप यहां बैठे, दिन में बैठे, सूर्य ऊपर है लेकिन सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, क्यों, बीच में छत है तो पसीना नहीं आता है। अगर 5 मिनट ये हॉल छोड़ के बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ रही है, 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, आप चाहो या नहीं चाहो, अपने आप ये सूर्य शरीर की पसीना गंदगी निकालता है, पसीना निकालता है। ऐसे शिव बाबा कौन है, सर्वशक्तिवान है, तो उसकी किरणें अभी भी पड़ रही है लेकिन आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर के भान में है। तो इसलिए शरीर के भान से बाहर लाओ, जागृत करो। तब बाबा को कहना पड़ता है पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वमान में स्थित हो जाओ, अपने आप को पूछ लो मैं कौन। जैसे जागृत होते करते हो तो वो शक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें, शिव बाबा की किरणें हमारे पर पड़ती है, अपने आप शक्ति बैटरी चार्ज होती जाती है। तो इस शक्ति को कहा यह है शांति की शक्ति। अगर रोज इस प्रकार 10-15 मिनट भी बैठो आप, मन बुद्धि दोनों चलती है तो आंखें बंद नहीं होती है, नींद नहीं आती है। नहीं तो इधर बैठे कोई आया, इधर देखा कोई आया, उधर देखा, क्यों, खाली मन खाली इधर उधर भटकता है। तो दोनों शक्तियों को हम बैठे हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ये दोनों शक्ति अगर विधि पूर्वक परमधाम तक जाता है पांच मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, इसको एक रस, अगर इधर उधर के विचार न आते हुए मन ने प्रश्न किया, बुद्धि ने जवाब दिया, ये दोनों अगर परमधाम तक जाता है, कितना समय बुद्धि वहां स्थिर होती है, उतनी शक्ति को ग्रहण करती है। तो ये शक्ति अगर रोज आप चार्ज करते हो, जब संसार में चलते हैं कि कलयुग है, दोनों प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है, उनके साथ कर्म बंधन भी है, उनके साथ सेवा करना पड़ेगा, हिसाब किताब चुप तो करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? तो शक्ति चाहिए ना, समझ है, ज्ञान सुना है, योग नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुख से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति गलत शब्द बोलता है, परेशान करता है, न चाहते हुए स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, स्वयं को कंट्रोल करने के लिए शक्ति नहीं आए, क्यों बैटरी चार्ज नहीं किया है। इसलिए रोज ये शांति की शक्ति अगर प्राप्त करते हो तो देखते हैं, समझते हैं सामने वाला गलत बोलता है, अपने आप को चुप कर सकते हो, स्वयं को कंट्रोल कर सकते हो, क्यों शक्ति है, तब का शांति की शक्ति से परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। किसी का कितना भी कड़ा स्वभाव संस्कार हो तो उसको आप परिवर्तन कर सकते हो। बाबा ने तब कहा कि शुभ भावना, सामने वाला देख रहे हो गलत बोलता है, गलत व्यवहार करता है, आपके मन में आता है बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, तो मन के अंदर क्या निकलता है, दुआ निकलती है, इसको सजा दे दो, इसको ये होना चाहिए, नहीं है तो क्या निकलेगा? अगर आपके उस अंदर होश नहीं है, शक्ति अमृत वेले भरी नहीं है, तो ज्ञान भी याद नहीं है, तो क्या निकलेगा? दुआ निकलेंगी, बद्दुआ निकलती है। तो वो स्वयं को ही फिर महसूस होता, अरे मेरे मन में क्या चला, मैंने उनको देखते हुए क्या विचार किया, फिर पश्चाताप होता है। तो इसलिए बाबा बच्चों को आकर के संगम पर सारे कल्प के अंदर ये एक विधि देता है कि भाग्य विधाता है, वो हर एक बच्चों का भाग्य बनाने के लिए आया है, तो अपने आप तो नहीं बनेगा ना, ततास्त तो करने से तो नहीं होगा ना, तो विधि देता है, उस विधि को समझकर अगर आचरण में लाते हो, अमल में लाते हो, उससे सिद्धि प्राप्त होती है, उससे शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति जब संसार में, कर्म तो हरेक को करना ही है, कर्म सन्यासी तो नहीं है, कर्म योगी है, लेकिन जो कर्म करते हो उस कर्म अगर शक्ति और ज्ञान है, भरा हुआ है, उसके बाद कर्म क्षेत्र पर जाते हो, कोई भी काम करो आप, उस कर्मों से स्वयं भी संतुष्ट और सामने वालों को भी संतुष्ट करते हो। जो भी कर्म करते हो, जो कर्म कर, उस कर्मों से औरों को सुख मिलता है, तो पुण्य जमा होता है। अगर ज्ञान और योग की शक्ति नहीं है, कर्म तो हरेक को करना ही है, तो उस कर्मों से सामने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, चाहे बोल से, चाहे दृष्टि से, चाहे आचरण से, किसी से ही, किसी प्रकार के कर्म करो, उस कर्मों से औरों को दुख मिलता है, तो क्या मिलेगा हमको? दुआ मिलेंगी कि बद दुआ मिलेंगी? पुण्य जमा होगा। तब बाबा ने कहा जाते समय क्या ले जाएंगे, तो चेकिंग करो भगवान ने आके हमें क्या दिया है, कितना पुण्य जमा किया हमने, तो चेकिंग करना चाहिए। नहीं तो हरेक व्यक्ति सुख चाहता है, श्रेष्ठ जीवन चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, अपने आप चले जाएंगे, अपने आप स्वर्ग में चलेंगे? हाँ स्वर्ग में जा भी सकते हो, लेकिन जाते समय क्या जाएंगे, लेके जाएंगे? तब आज बाबा ने पूछा था, खाली हाथ जाएंगे कि हाथ भर के जाएंगे? दोनों प्रकार के बच्चे हैं, एक ज्ञान सुनने के बाद भी खाली खाली हाथ जाएंगे, क्यों? उनको मुक्ति में जाना है, ज्ञान सुना, ज्ञान का उपयोग नहीं किया है, तो कमाई जमा नहीं हुई है। ज्ञान सुनने के बाद भी गुस्सा अगर किया तो जमा होगा? नहीं, खाली हाथ जा रहे। और ज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद आचरण में लाया, कंट्रोल किया, सामने वाले ने गुस्सा किया, आप शांत रहे, आपने ज्ञान का उपयोग किया तो क्या हुआ, पुण्य जमा हुआ। जाते समय आत्मा क्या लेके जा रही है, पुण्य ले जा रही है। तो पुण्य आत्मा सत्युग में आएगा और क्या प्राप्त करेगा, उच्च पद प्राप्त करेगा। ऐसे नहीं ज्ञान सुनने से अपने आप स्वर्ग में आएंगे, अपने आप पुण्य मिलेगा। नहीं तो भक्ति मार्ग में है कि कथा सुनो, प्रवचन सुनो, सत्संग करो, पाप मिट जाएगा। नहीं, सिर्फ सुनने से, आज सुनने से, श्रवण से आचरण में नहीं आता है। श्रवण के बाद मनन चिंतन करना चाहिए। तब बाबा कहते मुरली सुनो, लिखो, उसके ऊपर कर्म करते करते चिंतन करो। गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, दूसरों के सामने दूसरों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं, उनसे हमें दुआ मिलेंगी कि क्या मिलता है। ज्ञान तो जानते हैं, लेकिन ज्ञान का आचरण, उपयोग अगर नहीं किया तो हमारे किसी प्रकार के कर्म करो, उस कर्मों से औरों को सुख नहीं मिलता है। सुख नहीं दिया तो पुण्य जमा नहीं हुआ है। पुण्य जमा नहीं हुआ तो जाते समय कौन सी आत्मा जा रही है, एक पाप आत्मा है, एक पुण्य आत्मा है, एक खाली आत्मा है, कुछ भी जमा नहीं किया है, तो अपने आप को देख लो। तब बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे बन गए, भाग्य विधाता आया है भाग्य देने के लिए, लेकिन चेकिंग करो मैंने कितना झोली भरी है। और तीन प्रकार से पुण्य जमा कर सकते हो, जमा का खाता। एक, स्वयं के पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ कैसे करेंगे, अपने को आत्मा समझ अमृत वेले, और शाम को दो समय बाबा ने निश्चित किया है, उस समय कम से कम बैठकर मन बुद्धि को कनेक्शन जोड़ दो, सर्वशक्तियां भर लो। एक पुरुषार्थ से शक्ति भर लो, एक कर्म भी हरेक को करना, संसार में हर प्रकार के कर्म करते समय हमारे कर्मों से, वाणी से, संकल्प से, चलन से, आचरण से, सेवा से, जो भी कर्म करो उस कर्मों से औरों को सुख मिलना चाहिए, तब पुण्य जमा होता है। पूछ लो आप, किसी प्रकार के कर्म करो, हमारे कर्मों से औरों को सुख मिलता है, साधारण भाषा है। बहुत बड़े नहीं, पुण्य जमा करना चाहिए, दान करना चाहिए, वो बाद में, कम से कम आपके पास क्या है, वाणी आपके पास हाथ में है, बोलना कैसा है, विचार करना आपके हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में। आप कहेंगे दान करना चाहिए, पैसे ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, दान कैसे करो। आपके पास जो चीज है साधारण रूप से शुरू करो। तब बाबा कहते साधारण बच्चे ही, मेरे बच्चे साधारण, बाबा के बच्चे, गरीब बच्चे ही भविष्य में जाके क्या करेंगे, क्या बनेंगे, तो वही कुछ पुरुषार्थ कर सकता है। उनको ही, हमें ही अपने जीवन के अंदर ज्ञान को आचरण में लाना है, तब हमारे कर्म बोल, नहीं तो अभी भी मुख से गलत शब्द निकलता है ना, अभी भी परिस्थिति तो होती है, तो भी मुख से गलत शब्द निकलता है, तो क्या होगा, ज्ञान का फायदा क्या है, हमारे मुख से क्या निकला, पुण्य जमा होगा, दुआ मिलेंगी, तो पूछ लो पुण्य जमा करना है। तीसरा कहा, जो भी सेवा करते हो तो सेवा से भी क्या होगा, पुण्य दुआ मिलती है। अगर साफ स्वच्छ अच्छी तरह से सेवा करो, अथक होकर के सेवा करो, थक गए हम थोड़ा सा सेवा किया, क्यों, शरीर का भान है तो जल्दी थक जाते हैं, ताकत नहीं है, सवेरे योग नहीं किया, ज्ञान नहीं सुना, किसकी सेवा कर रहे हो आप, शिव बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहे हो। तो शिव बाबा ने वादा किया, मैं एक का पदम गुना दूंगा, एक का एक गुना नहीं। अगर सेवा करते समय बुद्धि में याद है हम किसकी सेवा कर रहे हैं, शिव बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, और शिव बाबा ने वादा किया है, बच्चे मेरे याद में अगर आप सेवा करते हो, अथक होके सेवा करते हो, निमित्त समझकर सेवा करते हो, शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो, तो क्या होगा, एक का पदम गुना जमा होगा। अगर श्रीमत के अनुसार नहीं, मन मत मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, अपने मत से करते हो तो मिलेगा। तो सेवा तो हरेक करता है, सेवा करते समय निमित्त बाबा शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार उसकी यज्ञ की सेवा कर रहे हैं हम, ये स्मृति है। ये तीन तरीके हैं कि जमा करने का। तो पूछ लो हम कि हमने कितना जमा किया है, कल जाते समय हमारे साथ क्या जाएगा? क्यों बाबा ने बार बार कहा, बच्चे समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, बहुत थोड़ा समय है, थोड़े समय के अंदर सारे कल्प के लिए जो भाग्य चाहिए, जो प्रारब्ध जमा करना है, वो अभी बीज बोना है, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा। इसलिए कलयुग और स्वर्ग में अंतर क्या है? आज देखो कलयुग के अंदर किसी का तन बहुत सुंदर है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसके पास बहुत धन है लेकिन तन सदा बीमार है। तो इम्बैलेंस है, इन तीनों में समानता नहीं है। तो संगम पर हमें तीनों बीज बोते हैं कि भविष्य में सारे कल्प के लिए तन मन धन से संपन्न रहे। तो तीनों प्रकार के बीज यहां बोना पड़ेगा ना, कि अपने आप मिलेगा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सदा सारे कल्प के लिए मिलेगा, सभी को एक जैसा मिलेगा? तो बीज यहां बोना पड़ेगा, है ना। किस प्रकार हम बीज बो रहे हैं, कितना बीज बो रहे हो, उस प्रकार का फल मिलेगा, उतना मिलेगा ना। तो अपने आप नहीं, भगवान एक बीज बोलो अपने आप दे देगा, नहीं, हिसाब किताब है। जो जितना तन लगा रहे हो 24 घंटे के अंदर, ये तन कितना भगवान की सेवा में लगा रहे हो, कितना एक व्यक्ति के, एक परिवार के सेवा में लगा रहे हो, मन कितना समय भगवान के सेवा में, क्यों? उसने कहा है एक का पदम गुना देगा। धन कहां लगा रहे हो, कहां जा रहे धन, किसके लिए लगा रहे हो? एक व्यक्ति के लिए लगा रहे हो, एक परिवार के लिए लगा रहे हो, कि विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में लगा रहे हो, सारे विश्व के आत्माओं को सुख देने के कार्य में लगा रहे हो? तो वहां एक का पदम गुना रिटर्न मिलेगा। तो धन तो है, धन कहां लगा रहे हो, तब एक का पदम गुना जमा होगा। ये तीनों किस विधि से जमा कर रहे हैं, तो ये जानना चाहिए। तो इसलिए कहा, बाबा ने कहा कि जमा का खाता कितना जमा किया है वो चेकिंग करो। सेवा, स्वपुरुषार्थ और अपने कर्मों के द्वारा, वाणी, संकल्प, बोल, चलन के द्वारा औरों को सुख मिलना चाहिए। ये तीन विधि बताया, जमा कितना किया है। और ये कब होगा जमा तीनों? जब शांति की शक्ति हो आपके पास। और शांति की शक्ति कैसे आएंगी? ये मन और बुद्धि, जब भी 5 मिनट भी योग में बैठो, जागृत होके बैठो, विधि पूर्वक बैठो, क्योंकि सिर्फ भावना नहीं है। भावना का काम हो गया, भक्ति हमने बहुत किया, भावना का फल अब ज्ञान मिला है, समझ मिली है। तो भावना और समझ ये दोनों एक करके प्रारब्ध जमा करना है, है ना। तो पुण्य जमा करना चाहते हो, भाग्य जमा करना चाहते हो, समझ से कर रहे हैं। तो दोनों शक्ति चाहे मन और ये बुद्धि। तो कितना समय एकाग्र होता है, विधि पूर्वक सहज तरीका, अपने आप से बात करते रहो। अगर कभी आप किसी से बात करते रहो तो नींद आएंगी, इधर उधर देखेंगे, नहीं है ना। तो ऐसे स्वयं से बात करो। तो और बात करने की विधि, आत्मा, पहले आत्मा से शुरू करो, मैं कौन, फिर मेरा रूप, प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि जवाब देती रहती है। ये दोनों शक्तियां, नहीं तो एक इधर जाती है एक इधर जाती है। तब कहते योग में बैठो तो व्यर्थ विचार आता है, मन इधर उधर भागता है, कि उसको आपने काम नहीं दिया। काम नहीं देगा तो अपने आप जाएगा ना, जहां रास्ता है वहां चला जाएगा, जहां संबंध है वहां चला जाएगा। तो हमारा सर्व संबंध अगर आत्मा समझ के बैठते हो, आत्मा का संबंध एक परमात्मा से है। तो ये शांति की शक्ति से परिवर्तन करने की शक्ति आती है, और परिवर्तन शक्ति से जो संसार में नेगेटिविटी है उसको हम पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, शांति की शक्ति माना बिल्कुल शांत होके बैठ जाना, तो शांत होते धीरे धीरे आंखें भी बंद हो जाती है, धीरे धीरे नींद आ जाती है। तो नींद करना योग नहीं है, है ना, उसको कहते हैं डेड साइलेंस में चले जाओ, माना नींद करो नहीं, है ना, आंखें बंद नहीं है, स्वीट साइलेंस कहते हैं इसको। ये दोनों शक्तियां चलना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।